नमस्कार।
आज हम उस विषय पर बात करते हैं जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जिस पर बात की जाती है और बहुत कॉमनली हम उसके ऊपर बात करते हैं, वो है डिप्रेशन, अवसाद। यानी जब भी मन थोड़ा सा उदास हुआ, हमें लगता है कि हम डिप्रेस्ड हैं। कभी भी कोई दुखी लग रहा है तो हम सोचते हैं कि वो बड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा है। मंडे ब्लूज की बात होती है, आई एम फीलिंग वेरी लो। ये सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी में बहुत कॉमन है, लेकिन सचमुच में अवसाद या डिप्रेशन क्या है और एक बीमारी कब बन जाता है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा। डॉक्टर शर्मा, यहीं से शुरू करते हैं कि दुखी तो आजकल हम सब हैं और थोड़ा थोड़ा डिप्रेस्ड फील करना या लो फील करना, कुछ हो जाए या कुछ ना भी हो तब भी, लेकिन एक्चुअल में डिप्रेशन क्या है? क्या ये नॉर्मल नहीं है ऐसा लो फील करते रहना?
देखिए, आपने कहा कि दुखी हम सब हैं, क्या दुखी होना जरूरी है? एक ही स्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग रूप से अपना दुख महसूस करेंगे या व्यक्त करेंगे, ये तो सच्ची बात है। हमसे वो लोग जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस में, चैलेंजिंग सिचुएशंस में हैं, वो भी शायद वैसा ना महसूस करें, और हम सो कॉल्ड बाहर की चीजों के होते हुए भी अपने अंदर एक तरह का अभाव महसूस करें। यहाँ पे व्यक्ति टू व्यक्ति में फर्क आ जाता है। हम में से हर व्यक्ति कभी ना कभी थोड़ा सा लो महसूस करता है। कई बार जब बाहर चैलेंजिंग स्थिति होती है तो हमें अपने अंदर विड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है, कुछ देर के लिए उस स्थिति का आकलन करने के लिए और फिर उस स्थिति को रिस्पॉन्ड करने के लिए। और उस समय में थोड़ा सा अगर स्थिति बहुत चैलेंजिंग है, मान लीजिए किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत आपका क्लोज बीमार है, या किसी की डेथ ही हो गई है, या जॉब में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस आ रही हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा कई बार लोग कुछ महत्वाकांक्षाएं जो उन्होंने बना के रखी हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो रोज ही उस चीज का आंकलन करके वो लो महसूस कर सकते हैं। और वो कभी कभार अगर होता है, स्थिति के हिसाब से होता है, थोड़ी ही देर के लिए रहता है और हम सॉल्यूशन फोकस्ड होते हैं, जिसमें कि हम उसी स्थिति में कैसे अपने आप को इस तरह से रिस्पॉन्ड करें कि हम उस स्थिति से निबट पाए। जब वो होती है तो वो एक नॉर्मल इमोशन है और हर सोसाइटी में उस नॉर्मल इमोशन की एक तरह से परिभाषा है। गमी के बाद भी कितने दिन तक इंसान को लो रहना है, पर किस तरह के काम करते रहना है। मान लीजिए उसकी वजह से इंसान खाना पीना बंद कर दे, काम पे जाना बंद कर दे, सोना बंद कर दे और 15 दिन में वो भी डेथ बेड पे पहुंच जाए, वो नॉर्मल नहीं माना जाता किसी भी कल्चर में। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी की जॉब में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप सारा दिन वही चीज बैठ के सोचते रहते हैं और आपकी जिंदगी रुक सी जाती है, या घर में किसी के साथ आपकी टेंशन चल रही है, या बाहरी किसी व्यक्ति के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, लेकिन हर समय आप उसी के बारे में सोच रहे हैं और वही आपका प्रिवेलिंग इमोशन है महीनों तक, तो वो नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल का मतलब है कुछ देर के लिए, कुछ हद तक, और वो उससे आपको एकदम रुक जाने में नहीं सिद्ध होता, तब वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो बढ़ता जाता है, बिना किसी बाहरी परिस्थिति के हो जाता है, सीमिंगली जो बाहर किसी रूप में नहीं दिख रही, सब कुछ देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है नहीं, मुझे हर स्थिति जो है वो नॉर्मल नहीं लगती, या मुझे डर है कि आगे जाके कुछ खराब ना हो जाए, या मुझे ये लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वो जो दिखा रहे हैं वो वैसे नहीं है, या उसे लगता है कि देखने में अभी तो ये चीज ठीक लगती है, शायद थोड़ी देर बाद खराब हो जाए। तो इसका मतलब है कि उसका उस स्थिति का आंकलन थोड़ा ठीक नहीं है, और फिर उसके साथ में अगर वो एज एन इमोशन उदासी महसूस करे, उस इमोशन के साथ साथ अगर उसकी फिजिकल सिचुएशन में फर्क आ जाए, यानी नींद में बहुत फर्क आ जाए, या खाने में फर्क आ जाए, या वेट बहुत लूज कर जाए, या सोशल रिलेशनशिप में फर्क आ जाए, यानी वो विड्रॉ करना शुरू कर दे, बातचीत करना बंद कर दे, कॉल्स लेनी बंद कर दे, या रोने लग जाए बिना कारण के, یا کام پہ جانا بند کر دے یا اسے لوگوں کو دیکھ کے ہمیشہ ڈر لگے اور یہ چیز کچھ دنوں سے زیادہ چلتی رہے، 2-3 ہفتے سے زیادہ، اور باہر والے بھی اس کی استھتی میں ایک ڈیفینیٹ چینج محسوس کر رہے ہیں، تو یہ نارمل نہیں ہے. وہاں سے پھر ایک اب نارمل صرف موڈ کی نہیں لیکن ایک طرح کے ڈپریشن ایز این النس کی شروعات ہو جاتی ہے.
اب اگر اس استھتی پہ ہم پہنچ رہے ہیں، ہم پہنچے ہیں، ہمارے آس پاس والا کوئی پہنچ رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ واٹ شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ؟
زیادہ تر لوگ ایکچولی اویئر نہیں ہوتے. کئی بار لوگ اویئر بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایکسپٹ نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایکسپٹ کرنے کے بعد بھی پھر ایک دم ڈینائی کر دیتے ہیں، یا اس کے آس پاس والے جو لوگ ہیں وہ اسے ایکسپٹ نہیں کر دیتے، کیونکہ کئی طرح کی میتھس اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایکسپٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو سولوشن نہیں ڈھونڈیں گے. پھر اسی میں کی پرابلم ہے بھی کہ نہیں بھی ہے، ہے تو بہت چھوٹی ہے، چلو اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، سبھی کو ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیے ڈپریشن کو بھی اگر ہم اور ہی بیماریوں کی طرح سمجھیں، خاص طور پہ جو سیویئر ڈپریشن ہے جس کو ہم کلینکل ڈپریشن کہہ سکتے ہیں، جو کہ عام طور پہ قریباً 2 ہفتوں سے زیادہ سیویرٹی کے ساتھ رہتا ہے، جس سے اس ویکتی کے صرف موڈ میں نہیں لیکن اس ویکتی کے انٹریکشنز میں، اس کے موڈ میں، اس کی فیزیولوجیکل پروسیسز میں، اس کے کام پہ اور اس کی سوشلائزیشن پہ، ان سب پہ اثر پڑتا ہے اکٹھا. تو ایسے میں اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈس آرڈر ہے جس کو کہ ٹھیک کرنا ضروری ہے. اور ہر ڈس آرڈر کا مطلب یہ نہیں ہے دوائیاں. جیسے کہ اور فزیکل ڈس آرڈرز ہیں جس کے اندر ہمارے شریر میں کیمیکلز میں بدلاؤ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم پورے شریر میں اس کا اثر دیکھتے ہیں. اگر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو اس میں بھی باڈی کے اندر کچھ کیمیکلز کے چینجز ہوئے، اور ان کیمیکل چینجز کی وجہ سے اس کے ہارٹ کے اوپر بھی اثر پڑا، اس کے مسلز کے اوپر اثر پڑا، اس کے برین کے اوپر بھی اثر پڑا. اور اگر ڈائبٹیز ہے تو بلڈ شوگر بڑھی، وہ ایک کیمیکل چینج ہے، اور اس کیمیکل چینج کی وجہ سے پورے شریر کے اوپر، مسلز کے اوپر بھی، اس کے برین کے اوپر بھی، اس کے نروز کے اوپر بھی، اس کے ہارٹ کے اوپر بھی، اس کے سکن کے اوپر بھی، ہر چیز پر اثر پڑا،
کڈنی پر سب سے زیادہ،
کڈنی پر سب سے زیادہ. اسی طرح سے ڈپریشن میں بھی کچھ چینجز آ جاتے ہیں، شریر میں بھی چینجز آتے ہیں اور برین کے اندر بھی چینجز آتے ہیں. آج کے سمے میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جو ڈپریشن ایز این النس ہے، انکلوڈنگ ڈپریشن ایز این ایموشن، اس میں ہمارے مائنڈ کے کچھ کیمیکل جنہیں ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں، ان میں بدلاؤ آتے ہیں. اگر وہ بہت زیادہ دیر تک چل رہی ہے، سسٹینڈ ہے، تو وہ جو بدلاؤ ہیں وہ زیادہ کوانٹٹی کے ہوں گے، زیادہ لمبے ہوں گے، اور زیادہ دیر تک اور زیادہ شریر کے حصوں پر اس کا اثر رہے گا. کیونکہ باڈی کا ہر فنکشن برین سے ریگولیٹڈ ہے. تو اگر اوپر سے وولٹیج ہی اچھی نہیں آ رہی ہے تو ہماری سوچنے کی شکتی، محسوس کرنے کی شکتی، چلنے پھرنے کی شکتی، اچھا شکتی، سب پہ اثر پڑ جاتا ہے. کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ ڈپریشن میں آپ اپنی ول پاور سے کام
کیجیے. اور انفیکٹ اٹ از یو نو لائک اگر کسی ایسے ویکتی کو ہو جائے جو بہت سنبھل ہے، ادروائز بھی بہت سارے کام کر رہا ہے، اس کے لیے یہ ایکسپٹ کرنا کہ میری ول پاور نہیں ہے، میں اپنے ہی مائنڈ کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہا.
اگر کوئی بہت اچھا ایتھلیٹ ہے اور وہ کہے کہ میں تو اتنا اچھا ہوں کہ میں بنا کھانا کھائے ہوئے بھی میراتھن دوڑ سکتا ہوں، تو پاسبل نہیں. اسی طرح سے ہمارے برین کو چلانے کے لیے جو بعد میں ایموشنز کے روپ میں یا تھاٹس کے روپ میں سامنے آتا ہے، جس کو مائنڈ کہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ اس پروسیسز کی ضرورت ہے، اور وہ پروسیس کے لیے الیکٹریکل اور کیمیکلز کی ضرورت ہے، جو کہ برین کے اندر سائملٹینیسلی لاکھوں کروڑوں ایکچولی ریئیکشنز ہو رہے ہیں. اگر اس کے لیے سبسٹریٹ ہی کم ہے، اگر اس کے لیے وہ کیمیکلز ہی کم ہے، پیچھے سے بہت وولٹیج ہی کم آ رہی ہے، تو آؤٹ پٹ تو نہیں ہوگی نا. اچھی سی اچھی مشین کو بھی پیچھے سے تو وولٹیج چاہیے، तो अगर वो वोल्टेज ही नहीं आ पा रही है उस समय में हम और व्यक्ति को कहते हैं तो ज्यादा वोल्टेज यूज कर अपनी इच्छा शक्ति को और बढ़ा ताकि हर चीज को आप सक्षम रूप से कर पाए, तो उसके लिए उस समय वो पॉसिबल नहीं है। अगर जुकाम ही हो जाए, मुझे थोड़ा सा आज जुकाम है, तो उसमें जो चीजें करने की शक्ति है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर थोड़ी छोटी सी चीज से ही हम इतने इफेक्ट हो सकते हैं, तो जो बड़ी चीजें करने के लिए हमको जरूरतें हैं माइंड में, वो जब केमिकल्स ही नहीं बन पा रहे तो उसकी वजह से हम नहीं कर पाएंगे। उस समय में उस व्यक्ति से एक्सपेक्ट करना कि वो नॉर्मल से ज्यादा अपनी पावर को लगा के उससे ऊपर उभर के आए, ये बहुत टू मच हो जाता है और लोग नहीं कर पाते, और एक्चुअली इसी वजह से कई बार लोग टूट जाते हैं। तो इन चीजों को पहले तो एक्सेप्ट करना कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, इंसिडेंटली ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे को नॉलेज है, इसके बावजूद भी मैं हो सकता है कभी डिप्रेस हो जाऊं, और ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी सेलिब्रिटीज को हो सकता है जिनके पास सब कुछ है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे फिल्म एक्टर्स हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, किसी को भी हो सकता है। इंसिडेंटली आज के समय में डिप्रेशन हार्ट डिजीज के बाद सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड के रूप में उभर के आ रहा है। डिप्रेशन की वजह से अगले 5 सालों में सबसे ज्यादा लोगों को फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी, और उसकी वजह से उनके जीवन पर, उनके काम पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। एंड इंसिडेंटली एक दूसरा रूप भी है कि अगर व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसकी वजह से उसको जो बीमारियां हैं, फिजिकल बीमारियां जिनको कहा जाता है, क्योंकि वो भी माइंड से रिलेटेड है, तो वो कई गुना ज्यादा होंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर व्यक्ति को डिप्रेशन है और उसको छोड़ दे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। सो पहला सोल्यूशन है कि वो व्यक्ति और उसके आसपास के लोग एक्सेप्ट करें कि कभी भी किसी को भी कुछ देर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जो एक नॉर्मल सैडनेस के इमोशन से अधिक है, और अगर वो अधिक समय तक चल रही है 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा सीवियर रूप में, और अगर उस व्यक्ति की सारी जिंदगी उसकी वजह से इफेक्ट हो रही है, रुक सी रही है, तो वो एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है जिसे और ही प्रॉब्लम्स की तरह ठीक किया जा सकता है। देखिए, हम ये भी जानते हैं कि कुछ परसेंट लोग, उनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, उनकी फैमिलीज में है, तो ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली में है तो हर बच्चे को होगी, लेकिन थोड़ी सी चांसेस बढ़ जाते हैं स्पेशली सीवियर डिप्रेशन होने के, खास तौर पे अगर उनकी स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, अगर एज अ पर्सनालिटी वो चीजों को हमेशा एक नेगेटिव रूप से देखने के बचपन से आदि हैं, या उनके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ज्यादा डिफिकल्ट रहे हैं। दूसरी बात कि जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं या जो पोजीशन ऑफ पावर में हैं, वो एक्चुअली दूसरों की ज्यादा प्रॉब्लम्स को रोज झेलते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो रोज सुबह से शाम तक सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम्स, स्पेशली मेंटल प्रॉब्लम्स को सुनता है, एंड आई एम श्योर कि जितने भी बड़े बड़े स्पिरिचुअलिस्ट हैं फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी रिलीजन, उनको भी तो दूसरों की कई चीजों को बहुत ज्यादा सुनना, समझना, सोल्यूशन देना, और अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाना, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एक्चुअली स्ट्रेस है। हाँ, उनकी क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं तो वो काफी हद तक इन चीजों को थोड़ा सा बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन वो भी तो एक प्रोसेस है ना। तीसरी जो सबसे बड़ी बात समझने की है इस एस्पेक्ट में कि बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं है, बॉडी के हर हिस्से पर माइंड का असर है, और जो हमारे शरीर में हो रहा है वो हमारे ब्रेन और माइंड के ऊपर पूरा असर करता है। उसी ब्रेन के अंदर वही ब्लड है जो कि पूरे शरीर में चल रहा है, उसमें जो केमिकल्स हैं वही पूरे शरीर में जा रहे हैं, तो दोनों का एक फीडबैक मैकेनिज्म है, और अगर इसीलिए कुछ भी शरीर में हो रहा है तो उसका ब्रेन पे असर पड़ता है, उससे हमारी जो आउटपुट है जो कि माइंड है उसके ऊपर असर पड़ता है। एंड इंसिडेंटली अगर सब कुछ ठीक होने के बाद सब कुछ बाहर नॉर्मल है और उसके बावजूद व्यक्ति डाउन महसूस कर रहा है तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वो लो महसूस कर रहा है, इट इज स्टिल अ माइल्डर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। लेकिन अगर बाहर सब कुछ ठीक है और आप सडनली बहुत लो महसूस कर रहे हैं, देन इट इज समथिंग विच इज मोर प्रॉब्लमेटिक, मे बी मोर सिवियर, जिसके लिए आपको जरूर जल्द से जल्द मदद की जरूरत पड़ती है।
मैक्सिमम लोग जो हैं वो डिप्रेशन की का इलाज नहीं कराना चाहते, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स सामने आती हैं, लाइक हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन है, लंबा इलाज चलता है, डिप्रेशन से बाहर निकलते देखे ही नहीं हमने लोग, डिप्रेशन सालों साल चलता है, सारा काम रुक जाता है, नॉर्मल व्यक्ति जिंदगी जी नहीं सकता, नॉर्मल चीजें कर ही नहीं पाता।
ये जो फीलिंग की डिप्रेशन का इलाज सिर्फ मेडिकल है, पहले तो वो भी गलत है। डिप्रेशन का इलाज जहां जरूरत पड़े वहां मेडिकल यानी मेडिसिन के द्वारा, और बहुत सारा काम उसके बाद जब व्यक्ति कर पाए तो अपने ऊपर या जस्ट डे टू डे सिचुएशंस के ऊपर, या अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं तो उनके ऊपर, जिनको थेरेपी बोलते हैं। थेरेपी का मतलब है कोई व्यक्ति जो उस समय बाहर सिचुएशन में है वो आपके साथ उस सिचुएशन से नहीं जूझ रहा, क्योंकि वो उस चीज को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पा रहा है, वो आपको ऑल्टरनेट्स दे और उन ऑल्टरनेट्स के द्वारा आप अपनी लाइफ सिचुएशन को बदल सको, अपने थिंकिंग पैटर्न को बदल सको, उस समय के लिए या फ्यूचर के लिए। मेडिसिन से पहले एक स्टेप आ जाता है कि कॉज क्या हो सकता है डिप्रेशन का। कई बार डिप्रेशन के कॉज एक्चुअली फिजियोलॉजिकल होते हैं, यानी शरीर में कोई और बीमारियां हैं, थायराइड की कमी है, कुछ और हार्मोन्स की कमी है, कई बार विटामिन्स की कमी। आज के समय में खासतौर पे इंडिया में बड़े शहरों में विटामिन डी की, विटामिन बी की, इस तरह की कमियां, या कोई व्यक्ति पूरी तरह से कई महीनों से सो नहीं रहा, या उसका काम जो है उसकी वजह से उसको सही टाइम पे खाने को नहीं मिल पा रहा और उसकी वजह से उसके अंदर कुछ कमियां हैं। कुछ मेडिसिन जो कि दूसरी बीमारियों के लिए दी जाती हैं, खासतौर पे एंटी हाइपरटेंसिव, उनकी वजह से ऐसा हो सकता है। कुछ लोग जिनको कि कैंसर इनिशियल स्टेजेस में है, उनको डिप्रेशन जैसी पिक्चर हो सकती है। वायरल फीवर अगर बहुत लंबे अरसे तक चला है तो उससे डिप्रेशन जैसी एक सिचुएशन व्यक्ति महसूस कर सकता है। अगर स्ट्रोक हुआ है किसी व्यक्ति को तो उसकी वजह से जो ब्रेन को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही, उसकी वजह से डिप्रेशन भी साथ में आ सकता है। जो एल्डरली हैं उनमें जो उनकी बीमारियां हैं उनके साथ में डिप्रेशन हो सकता है, खासतौर पर इलनेस कॉल्ड डिमेंशिया। जो एपिलेप्सी वाले लोग हैं उनमें खासतौर पर जब लंबे समय से वो चलती है तो उसकी वजह से डिप्रेशन आ सकते हैं, तो वो सब चीजें तो नहीं है। और एक्चुअली एक तरह से अगर आप देखें तो ये चीज प्रूव करती है कि अगर फिजिकल सिचुएशंस, फिजिकल इलनेसेस या मेडिसिन फॉर दोस इलनेसेस की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, तो ये भी एक तरह से एक फिजिकल तरह की प्रॉब्लम है जिसको जिस लेवल पे टैकल करना जरूरी है। दूसरा ये देखने की जरूरत होती है कि मान लीजिए कोई कहता है कि साहब छोड़ दो ना, अपने आप ठीक हो जाएगा, बाहर की प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा, छोड़ देते हैं,
उस सिचुएशन से अलग कर दो, कहीं और ले जाओ,
कहाँ भागते रहेंगे। पर अगर चलो कुछ देर के लिए चले भी जाएं तो वापस तो आना है। और ज्यादातर जो सीवियर डिप्रेशन है उसमें व्यक्ति की सिर्फ एक सिचुएशन के बारे में नहीं, पूरी जिंदगी के बारे में नकारात्मक सोच आ जाती है। तो होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, जो नॉर्मली वो चीज कर सकता है वो भी उसे लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूं, तो इसलिए वहां पे उस समय के लिए, कुछ समय के लिए उसकी मदद करना ताकि वो बेटर महसूस करे। मैं अगर पैरेलल अगेन लूं डायबिटीज का, तो अगर ब्लड शुगर किसी की 500 है और उसे कहें कि साहब आप सिर्फ वेट कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मीठा खाना कम कर दीजिए, उस समय में वो इमरजेंसी है, उस समय में आपको उस लेवल तक उसको कम करना पड़ेगा कि वो बाकी चीजें कर सके,
लाइफस्टाइल को चेंज कर पाए।
तो वहाँ यहाँ पे भी उस व्यक्ति की मदद मेडिसिन के द्वारा इस हद तक कि वो बाकी चीजों को कर पाए, बाकी चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन उस समय पर जबकि वो उनको करने में सक्षम हो। मेडिसिन अगर सही तरीके से दी जाए तो उनकी वजह से व्यक्ति को लेटे रहने की, कुछ काम ना कर पाने की हालत हो जाए, वो सही नहीं है। एक्चुअली कई बार हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों को अगर साइड इफेक्ट्स हुए हैं और वो जाके प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्टर की सलाह लेके इन सब प्रॉब्लम्स को बताकर अगर बात करें तो आज के समय में कई तरह की मेडिसिन है, इंक्लूडिंग एंटी डिप्रेसेंट्स, जिनको कि उस व्यक्ति की लाइफ के हिसाब से ठीक किया जा सकता है ताकि उसको इफेक्ट आए लेकिन साइड इफेक्ट कम आए या ना के बराबर आए। इंसिडेंटली इनका असर एक ही दिन में नहीं आता, आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते लगते हैं जिसमें थोड़ा सा असर आना शुरू होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति महीनों से दवाई ले रहा और उसको कोई असर नहीं आ रहा या उसको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो इसका मतलब गलत दवाई है या वो सही प्रकार से नहीं ले रहा, जो भी कारण है। डिप्रेशन आज के समय में कम्प्लीटली मैनेजेबल है, ट्रीटेबल है अगर सही इलाज हो, और बिगिनिंग में फर्स्ट स्टेप सिवियर डिप्रेशन के लिए चाहे मेडिसिन हो, लेकिन उसके बाद सोच में, बाहरी हालात से डील करने में, अपनी जिंदगी का पर्पस बदलने में, बाकी लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में, लाइफस्टाइल को बेटर करने में, उसमें भी डिप्रेशन का उतना ही बड़ा रोल है, लेकिन एप्रोप्रिएटली जब उस सिचुएशन से वो व्यक्ति सीवियर सिचुएशन से निकल के उस सिचुएशन में जहाँ समझ पाए, कर पाए, करने की इच्छा भी हो और करने की ताकत भी हो।
अगर कोई मेंटल हेल्थ की जो इलाज है, बीमारी का जो इलाज है, वो दवाइयां खा के है, तो डायबिटीज का भी तो दवाई खाकर है। हमारा ये मेंटल ब्लॉक क्यों है कि ये हैबिट फॉर्मिंग है, इसके कारण हमें एडिक्शन हो रही है, ये हमें सुला देती है?
हर मेंटल इलनेस को डिप्रेशन कह दिया जाता है, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे वो बाइपोलर हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे एंग्जायटी हो, चाहे ओसीडी हो, जिसके की अलग अलग इलाज हैं और अलग अलग ड्यूरेशन के लिए इलाज होने चाहिए। तो हर बीमारी, पहली बात, डिप्रेशन नहीं है, हर मेडिसिन इस तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं लाती, और ये जरूर डिपेंड करता है कि जितने लंबे अरसे तक आपके सिम्टम्स चले हैं, जिसकी वजह से, जैसी बात हुई कि आपकी जिंदगी पे जो असर पड़ा है, उन असरों को ठीक करने के लिए उतने लंबे अरसे की दवाई देने की शायद जरूरत पड़ेगी और आपको उसके बाद मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। एक साथ ही जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज डिप्रेशन से जुड़ी हुई है कि अगर डिप्रेशन बहुत समय तक चलता है तो वो व्यक्ति जिंदगी से टूट सा जाता है, विड्रॉ हो जाता है, कई बार लोगों के काम परमानेंटली छूट जाते हैं, या जो आत्मविश्वास है वो खत्म हो जाता है, और वो चीज लाइफ लॉन्ग हो सकती है। वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जिसको कि हम ना समझते हुए किसी व्यक्ति को उसमें डाल देते हैं, और उसी के साथ साथ सुइसाइड एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट या कम्प्लीटेड एक बहुत बड़ा ऐसा इश्यू है जो कि डिप्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसके दूसरी बीमारियों के होने के जो चांसेस हैं, अगर जेनेटिक है खासतौर पे तो उसमें और ज्यादा, और अगर लाइफस्टाइल खराब है तो उसमें और ज्यादा, प्लस अगर डिप्रेशन है तो और बीमारियां, खासतौर पे कैंसर्स, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन एंड माइग्रेन्स एंड टेंशन हेडेक्स, उनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। So, अगर हम इस चीज को साइड पे अनदेखा कर देना चाहते हैं तो वो अनदेखा नहीं होगा, वो किसी ना किसी रूप में बाहर आएगा। अगर जल्दी उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके लिए मदद ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इसी के साथ एक और चीज जुड़ जाती है, कई जगहों पे जहाँ पे की डॉक्टर्स नहीं है, कई जगहों पे जहाँ पे की अंधविश्वास ज्यादा है, और कई जगहों पे कि जहाँ पे कि लोग अभी भी डिप्रेशन या किसी भी मेंटल प्रॉब्लम को ऊपरी या इस तरह से मानते हैं, तो उनका काफी समय, काफी पैसा और कई बार काफी इधर उधर की दवाइयां में उनका चलता रहता है और कई बार महीनों क्या सालों गुजर जाते हैं। और कई बार जैसा बात हुई कि किसी और ने कोई दवाई बताई कि मुझे हुआ था तुम भी ले लो, तो उसने लिया, बट द फैक्ट इज कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी है और उसका ट्रीटमेंट आपके हिसाब से होना चाहिए, उसका एक प्लान्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए। और जिनकी मेडिसिन की हम इतनी बात कर रहे हैं, मेडिसिन अगेन उसका एक पहला स्टेप लेकिन एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जहां जरूरत हो। बहुत से लोग हैं जिनको कि थोड़े देर के बाद ही मेडिसिन की जरूरत ना हो।
अच्छा,
या कई बार अगर माइल्डर डिप्रेशन है तो शायद मेडिसिन की भी जरूरत ना हो, लेकिन वो इवेल्युएट करने के बाद, या कोई और कारण है तो उस कारण को ठीक करके, स्पेशली अगर कोई फिजिकल इलनेस है वो ज्यादा मैनेज हो जाती है तो ये भी ठीक हो जाता है। तो वंस अगेन ये सारी चीजें जो हैं उनको एक प्लान्ड तरीके से लेके अगर हम चलेंगे तो बाकी प्रॉब्लम से भी बचेंगे, साथ ही साथ हम सही इलाज भी कराएंगे और फिर फ्यूचर में उसको कैसे कम करना है, क्योंकि ये सिर्फ वन टाइम जॉब नहीं है, ये फिर से आ सकती है। अगर आपकी एक टेंडेंसी बन गई है हर डिफिकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन में डाउन होने की, तो जिंदगी में तो आएंगी। उससे कैसे जूझना है उसको समझने का जो है तरीका, वो भी एक थेरेपी का हिस्सा है। उस समय वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं क्योंकि वो क्लैरिटी के साथ तो सोच नहीं पाते, तो उस चीज से भी उनको बचने की जरूरत है।
और एक जो बात डिप्रेशन से जुड़ी कहते हैं कि एक बार जो घुसा वो इससे बाहर नहीं निकलता है, ये कहां तक सच है?
आमतौर पे एक एपिसोड के लिए 6 से 9 महीने दवाई देने का एक पैटर्न है, क्योंकि ऐसा पाया जाता है कि जो सीवियर एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन है वो करीबन इस दौरान में लास्ट करते, तो अगर वो व्यक्ति का चल रहा है तो हम उस पीरियड के लिए उसको कवर करें, और वो जैसे ही थोड़ा सा बेटर हो तो धीरे धीरे हम उसकी मदद करें चीजों को नए तरीके से देखने की, या इस दौरान में जो उसकी जिंदगी में बाधाएं आई हैं या मुश्किलें आई हैं या वो जो चीजों से डील नहीं कर पाया है उसको ठीक तरह से करने में, और उसके बाद धीरे धीरे कम करके उनको मदद करें बंद करने में। अगर कोई व्यक्ति झटके से बंद करता, कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बंद कर देता है, या कोई व्यक्ति सालों, और ये भी पैटर्न हम देखते हैं कि लोग सालों ले रहे हैं, किसी ने आके कहा अरे इतनी देर होगी बंद कर दो, तो वो अगले दिन से बंद कर देते हैं और फिर 15 दिन बाद प्रॉब्लम में आते हैं, तो वो अगर पैटर्न कोई व्यक्ति करता है तो वो अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। तो उस चीज को ये नोटिस करके कि अगर लंबे समय तक चल भी रही है, अब साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, किसी की सही डॉक्टर की सलाह लेकर उसको कम किया जाए, नोटिस किया जाए कि कोई सिम्टम्स वापस तो नहीं आ रहे, जो अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं उनके साथ डील किया जाए, वहां पे दूसरे जो आसपास के व्यक्ति हैं उनकी भी मदद ली जाए और फिर उसको कम करके बंद कर दिया जाए।
डॉक्टर साहब, यहाँ पूछना चाहती हूँ, दवाई अगर बंद भी की जाती है, कंसल्टेंसी विद द डॉक्टर, यू नो टू बी इन टच विद डॉक्टर, वो कितना जरूरी और कितना लंबा रखना चाहिए वो?
देखिए, अगर आपकी कंसल्टेंसी डॉक्टर के साथ उसकी सपोर्ट के लिए है, उसकी गाइडेंस के लिए है, थेरेपी के लिए है, तो शुरू में आमतौर पर जब दवाइयां कम करके बंद की जाती हैं तो थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंटली, मे बी 1 in 2 weeks, देन 1 in a month, फिर 1 in 3 months, और सब कुछ ठीक है तो मे बी ओनली इफ रिक्वायर्ड, जब अगर जरूरत पड़े या जब कोई क्राइसिस हो तो उस समय ध्यान रख के। जरूरी नहीं है कि आप हर बार डॉक्टर से मिले तो एक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिम्टम्स हैं और वो शायद इतने बड़े नहीं है और उसमें लॉन्ग टर्म मेडिसिन को लेने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैं जाके सिर्फ बात ही करके वापस आ जाऊं डॉक्टर से, ये कोई फायदा नहीं है। वो भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन एंड थेरेपी उसकी जरूरत पड़ती है, और साथ में अपने जीवन के जीने के तरीके को, सोचने के तरीके को, उसमें आगे आने वाली प्रॉब्लम से बचने की, या उसे हम बहुत अच्छी तरह से डील कर पाए, देन इट बिकम्स अ कंप्लीट पैकेज। आपने उस समय की चीज को भी संभाला, आगे आने वाले समय में कुछ ना गलत हो उस चीज से भी अपने आप को प्रिपेयर किया, वो टूल्स सीखे जो कि मेडिसिन के द्वारा नहीं मिलते, लेकिन मेडिसिन ने वो आपको वोल्टेज दी कि आप उन टूल्स को इस्तेमाल कर सके। सो बोथ ऑफ दीज कैन बिकम अ वेरी सिनर्जिस्टिक प्रोसेस।
कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन में गया है और आसपास वाले, उनको ये फील होने लगता है कि दैट्स इट, अब इसके बाद हम इससे बाहर ही नहीं आ पाएंगे, हम नॉर्मल चीजें ही नहीं कर सकते, नॉर्मल सोच नहीं सकते, नॉर्मल खुश नहीं रह सकते, नॉर्मल वैसा फील नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल लोग करते हैं या बाकी लोग करते हैं या मैं पहले करता था। तो ये एक बड़ी बात। और दूसरा, जो पूरी फैमिली है उनके लिए भी काफी मुश्किल है अपने बच्चे को या अपने किसी व्यक्ति को ऐसे देखना जो हंसता खेलता एकदम से इस तरह से चला जाता है, तो उनको भी क्या, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
डिप्रेशन कम्प्लीटली ट्रीटेबल है, जितना जल्दी, जितना एडिक्वेटली और जितना कॉम्प्रिहेंसिवली हम उस व्यक्ति की मदद करेंगे या वो व्यक्ति ठीक होने के बाद अपनी मदद करेगा, उसका आउटकम उतना ही अच्छा होगा। दूसरी बात, इसमें जितने भी आसपास के लोग हैं, और हम यहाँ पे सिर्फ परिवार की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सोसाइटी की इन जनरल भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइंडसेट बदलने की जरूरत है, स्टिग्मा को कम होने की जरूरत है। एंड स्पेशली ऑफिसेज में ऐसा पाया जाता है कि जो व्यक्ति अगर कुछ देर के लिए डिप्रेशन में गया, वो जब नॉर्मल होता है तो बिल्कुल नॉर्मल पहले जैसा काम कर सकता है, और लोग करते हैं। परिवारों के लिए मुश्किल तब आ जाती है अगर कोई व्यक्ति जिसके बारे में उनको लगता है कि पहले तो बहुत अच्छा था, अब ऐसा क्यों हुआ, तो उनके लिए वो झटके को संभाल पालना, और खासतौर पे कुछ देर के लिए शायद हो सकता है कि वो व्यक्ति जो काम कर रहा था, इंक्लूडिंग फाइनेंशियली अगर सपोर्ट कर रहा था, तो वो काम कुछ देर के लिए दूसरों को संभालना पड़ सकता है, बट दैट वुड बी अ टेम्पररी थिंग। बच्चों में खासतौर पे पेरेंट्स को कई बार ये जो डर लगते हैं, क्योंकि इनसे कई चीजें जुड़ी हुई है, उनका कैरियर जुड़ा हुआ है, मैरिज जुड़ी हुई है, फ्यूचर जुड़ा हुआ है, और आप अपने बच्चे को कभी भी किसी तरह की पेन में नहीं जाने देना चाहते। सो आई वुड ओनली से कि अगर आप उसकी जल्दी मदद करते हैं, तो आप सिर्फ उस समय के लिए नहीं कर रहे, आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आगे जाके अपने आप उन प्रॉब्लम्स से डील करने की स्किल्स सिखाने में। और अगर उसे भी आप कहेंगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, किससे बात ना करो, या इसके बारे में कुछ नहीं करना, अपने आप ठीक हो जाएगा, रो रहे हो कोई बात नहीं, आई एम विद यू, पर कल आप उसके साथ नहीं होंगे, तो शायद उस बच्चे को अभी से वो स्किल सिखाने की जरूरत है। उतने ही सकारात्मक विचारों के साथ, उतनी ही फ्यूचर में होप के साथ, जैसे हम नॉर्मली जिंदगी जीते, डिप्रेशन के बाद भी चल सकता है, और इसकी वजह से जिंदगी रुक जाए इसमें कोई सच्चाई नहीं।
जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, जो बाकी लोग हैं उसे हंसाने की कोशिश करते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ले जाना चाहते हैं, और वो करना चाहिए या नहीं, लेट हिम बी, या ये एफर्ट्स करते रहने चाहिए?
ये एफर्ट्स करते रहने चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि क्या इस समय वो उन एफर्ट्स को
इरिटेट
पॉजिटिवली सपोर्ट कर पा रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, अकेले में रहकर डिप्रेशन बढ़ते हैं, तो आसपास अगर लोग रहें और अनकंडीशनल लव रहे, ये एक्सपेक्टेशन कि अच्छा मैं तो 2 घंटे बैठा और मेरी बातों पे वो हंसा ही नहीं, मेरी बातों को उसने अप्रिशिएट ही नहीं किया, मैं तो उसके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, रियलाइजिंग कि उसकी शायद हालत नहीं है कर पाने में, लेकिन मेरा एक फर्ज बन जाता है कि मैं लगातार उस चीज को करता रहूं, तो वो सब करते रहने से जरूर मदद मिलती है।
डॉक्टर अवधेश शर्मा, थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस टू रियली अंडरस्टैंड कि इसका सही मायने में मतलब क्या है और क्या किया जा सकता है इससे बाहर निकलने के लिए। डॉक्टर अवधेश शर्मा, थैंक यू सो मच।